हम पिछले 2-3 हफ्तों से बात कर रहे थे संस्कारों के ऊपर, संस्कार क्या है, कैसे इफेक्ट डालता है। और हमने जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं, 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सिमंतोन्नयन, उसकी चर्चा की। उसके बाद 6 जो जन्म के बाद जो चाइल्डहुड संस्कार हैं, बचपन के संस्कार, जैसे जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, कर्णवेध, मुंडन आदि संस्कारों की चर्चाएं की। अब बच्चा 5-6 साल का हो गया है, अब वो स्कूल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ना लिखना है। तो पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो संस्कार होता है उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। वैसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड 3 संस्कार हैं, एजुकेशनल सेरेमनी जिसको आप कहते हैं। उनमें से जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है वो है उपनयन संस्कार। उपनयन का संस्कार का भाव है इनिशिएशन ऑफ ए चाइल्ड फॉर हिज और हर फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं उपनयन संस्कार का, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति का शुरुआत, इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू एक्विज नॉलेज टू। दूसरा है टू बिल्ड कैरेक्टर, चरित्र निर्माण करना। उपनयन जो प्राचीन काल में जो शिक्षा बच्चे जो पढ़ाई करते थे प्राचीन काल में, उस शिक्षा का, एजुकेशन का 2 पर्पस होता था, आज उसका 1 पर्पस है। दोनों पर्पस में से पहला पर्पस था कि ज्ञान पाना, डेफिनेटली अपने आप को एजुकेट करना। दूसरा था अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना। ये दोनों शिक्षा का मूल उद्देश्य होता था जो प्राचीन काल में उसको फॉलो किया जाता था। और शिक्षा में एंट्री पाने के लिए, जैसे आजकल आप एडमिशन लेते हैं, स्कूल जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद फिर वहां आपका बच्चों का, पेरेंट्स की ओरिएंटेशन होता है। प्राचीन काल में भी यही सब होता था पर अपने स्टाइल में होता था। उसको हम कहते थे उपनयन संस्कार, एक तरह का एडमिशन, इनिशिएशन। और जब बच्चे का एडमिशन हो जाए, वो स्कूल जाता था, प्राचीन काल में स्कूल सिस्टम का अलग स्वरूप था, वो रेजिडेंशियल स्कूल होता था। गुरुकुल में, गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का कुल, अपने टीचर का अपना घर। जो शहरों से, गांव से लोग जहां रहते हैं वहां से काफी दूर, जंगल में दूर होता था, जिससे कि चारों तरफ का वातावरण आम लोगों से दूर रहे, उनसे बच्चे इन्फ्लुएंस्ड ना हो किसी भी तरह का, सोशियली, फैमिली वाइज, इमोशनली, कल्चरली कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और गुरु के पास रह करके, या जो गुरु का आश्रम होता था गुरुकुल, वहीं रह करके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होती थी, 10 साल, 12 साल, 24 साल, है ना, बहुत सारे बच्चे तो 24 साल, 28 साल तक, 48 साल तक भी वहां रह करके पढ़ाई लिखाई करते रहते थे। तो उसके अलग अलग लेवल है, बिल्कुल वैसे जैसे आजकल भी है। आप 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12th के बाद छोड़ देते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद छोड़ देते हैं, या कुछ लोग मास्टर्स करते हैं, कुछ लोग पीएचडी करते हैं, कुछ लोग आगे भी रिसर्च करते रहते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पहले जमाने में भी होता था, उसका स्वरूप अलग होता था। सॉरी। तो वो जो गेट है, दरवाजा है एंट्री करने का स्कूल का, उसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। वो भी सेलिब्रेट करने का दिन है, क्योंकि बच्चा पहली बार पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाएगा। दैट सेलिब्रेशन, वो जो उत्सव है, उसको हम उपनयन कहते थे। पर ये उपनयन का अर्थ क्या है? उपनयन का सिंपल मीनिंग है, उप मतलब पास नियर, नयन मतलब ले जाना। अगर सिंपल भाषा में कहें द एक्ट ऑफ लीडिंग टू और नियर, बच्चे को किसी के पास ले जाने का नाम उपनयन संस्कार है। किसके पास ले जाना? गुरुकुल के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। उस ले जाने के लिए घर में जो सेलिब्रेशन होता है उसी को हम उपनयन संस्कार कहते हैं। अच्छा, जब आपका उपनयन संस्कार होता है तो आपको एक सैक्रेट थ्रेड मिलता है, जनेऊ हिंदी में बोलते हैं उसको, शास्त्रों में बोलते हैं उपवीत और यज्ञोपवीत। उस यज्ञोपवीत से जनेऊ शब्द बना। वो जो जनेऊ है, वो जनेऊ क्या चीज है? वो आइडेंटिफिकेशन है। आजकल आप स्कूल जाते हैं ना, आपके बच्चे तो यूनिफॉर्म पहनते हैं और एक आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं। वो प्राचीन काल में वो आइडेंटिटी कार्ड होता था ये धागा उपवीत। तो जिसके गले में वो उपवीत है उसका दो मीनिंग है, या तो ये पढ़ा लिखा है या ये पढ़ रहा है। अगर ये पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उसको हमारे प्राचीन काल की भाषा में बोला जाता था ब्रह्मचारी। ब्रह्म मतलब ज्ञान, तो ज्ञान में जो लगा हुआ है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, आत्मा परमात्मा को समझने के लिए जो लगा हुआ है। ब्रह्म मतलब आत्मा, जो आत्मा को ठीक करने के लिए, चरित्र शुद्धि के लिए व्रत संकल्प के द्वारा कार्य कर रहा है, तो ब्रह्मचारी। तो अगर आपके गले में जनेऊ है, या तो आप ब्रह्मचारी हो, पढ़ लिख रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है तो भी जनेऊ है, तो आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। प्राचीन काल में एजुकेटेड व्यक्ति का नाम होता था द्विज। ध्यान दीजिए शब्द द्विज, आपको दिखाते हैं वो, या ये द्विज लास्ट में देखिए द्विज है, ट्वाइस बर्न। ये द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ है। ये ध्यान रखिए, द्विज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो पढ़ाई करने गया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो एजुकेटेड है। पहले जमाने में उसको द्विज कहा जाता था, दोबारा जन्म हुआ। एक मां के पेट से पैदा होता है गंदा, अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, अबोध है। एक पशु का बच्चा और इंसान के बच्चे में ज्यादा फर्क थोड़ा ही होता है, पर इंसान के बच्चे में पोटेंशियल होता है, वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। वो जो ग्रो करने के लिए जो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको हम शिक्षा एजुकेशन कहते हैं। तो बच्चा जब पढ़ लिख लेता है तो वो अब वैसा नहीं होता है जैसे मां के पेट से पैदा हुआ, बिल्कुल इग्नोरेंट, दुनियादारी का कुछ पता नहीं। अब उसका समझ अलग है, दुनिया के साथ डीलिंग करने का तरीका अलग है, इमोशंस का एक्सप्रेशन अलग है, क्योंकि अब वो एजुकेटेड है, चीजों को समझता है, जानता है। जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मतलब जो द्विज नहीं है, उसे कहा जाता था शूद्र। शूद्र का सिंपल भाषा क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, या पढ़ने लिखने का अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं मिला या जिसके पास नहीं है, उसी को शूद्र कहा जाता था। आज की भाषा में कहें अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है। और वो एजुकेशन में स्किल भी आता है, नॉलेज भी आता है, और कैरेक्टर बिल्डिंग भी आता है। जिसके पास कुछ भी नहीं वो शूद्र कहलाए। ध्यान दीजिए, ये जो उपनयन संस्कार का सिर्फ पढ़ाई से लेन देन नहीं, ये कैसे पूरा का पूरा प्राचीन काल में जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका भी ये सबसे कनेक्टिंग पॉइंट है, सबसे सेंट्रल पॉइंट है। आप समाज में शूद्र हो जाते थे अगर आप पढ़े लिखे नहीं है। दो जो चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये यही एजुकेशन से ही मिलता था और एजुकेशन का दरवाजा उपनयन से खोलता था। इसीलिए ये उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। जितने भी 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में अगर कोई सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है हर मामले में, सोशियली, स्पिरिचुअली, कल्चरली, लीगली, तो वो ये उपनयन संस्कार होता था। इसीलिए इसको आप ध्यान से ठीक से सुनिएगा, क्योंकि हजार हजार वर्षों तक ये न केवल इंडियन कॉन्टिनेंट में लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअली और एजुकेशनली इंपैक्ट डाला, पूरा जो सोशियल जो स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक ताना वाना है, वो इस उपनयन संस्कार के द्वारा ही डिसाइडेड होता रहा। जब सोसाइटी में कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश किया, सोशियल स्ट्रक्चर के साथ खेलने की कोशिश की, तो तब भी उन्होंने इसी उपनयन संस्कार को हथियार बना के कुछ लोगों को दबाने की कोशिश की, स्त्री और शूद्रों को। कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार बैन कर दिया, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर माँ बाप से पैदा हुए हो तो तुम्हारे जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, या तुम एक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हो, स्त्री हो। जब स्त्री और शूद्रों को दबाने का काम आया तो उनसे पढ़ाई लिखाई का हथियार छीन लिया, और उसके लिए क्या जरूरत थी, उपनयन संस्कार बंद करवा दो। समझ सकते हैं कितना पावरफुल था ये उपनयन संस्कार। आज भी जो इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, न केवल हिंदू समाज, आज तो भारत में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, पर वहां मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और नास्तिक भी हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। मजेदार बात क्या है कि कोई भी रिलीजन का लोग भारत में रहता हो, वो सब जगह इस उपनयन संस्कार का इम्पैक्ट आज भी दिखता है। जो सोशियल स्ट्रक्चर, वर्ण व्यवस्था, जिसको उपनयन संस्कार को मीडियम बना करके अच्छा बनाने की कोशिश की जाती थी, इसी उपनयन संस्कार के द्वारा जो सोशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ, उसका इम्पैक्ट आज भी मॉडर्न भारत में, आधुनिक भारत में, न केवल हिंदू समाज पर, सभी समाजों पर दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये संस्कार है, इसीलिए इसको ठीक से समझने की जरूरत है। आज हम सिर्फ एक ही संस्कार पर बात करेंगे। तो संस्कार का अर्थ हुआ, इस उपनयन संस्कार का अर्थ हुआ, जब शिष्य वा बच्चा पढ़ाई लिखाई के लायक हो जाता है, अब वो गुरु के पास जाएगा उसका संस्कार हो करके। अथर्ववेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। अथर्ववेद का ये बड़ा सुंदर मंत्र, ये जो द्विज बनने का जो प्रोसेस है, एजुकेटेड होने का जो प्रोसेस है, उसको बड़े सुंदर अलंकारिक भाषा में, अलंकारिक समझते, बड़े एनालॉजिकल वे में बात करने की कोशिश करता है। कहते हैं आचार्य उस ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी शब्द ध्यान रखिए, जिसको आज की भाषा में आप स्टूडेंट या विद्यार्थी कहते हैं, उस विद्यार्थी को इनिशिएट करके, मतलब उपनयन संस्कार करके अपने गर्भ में 3 दिन तक रखता है। जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को बहुत केयरफुली पालती है, केयर करती है, इसी तरह आचार्य, गुरु, टीचर अपने उस उपनयन संस्कार के द्वारा दीक्षित हुआ बच्चे को अपने गर्भ में रखता है, और जब गर्भ से निकालता है उस बच्चे को, तो सारे देवताएं, ज्ञानी, विद्वान, ऋषि, मुनि उसको प्रशंसा करते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। क्या मतलब है इसका? बड़ा खूबसूरत भाव है। आपका बच्चा, मां के पेट से पैदा हुआ बच्चा, अगर पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, कोई स्किल नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं, कोई कल्चर नहीं, तो कैसा होगा? वही बच्चा जब गया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके आता है तो एक दूसरे रूप में आता है। तो सारे ज्ञानी विद्वान देवता खुश होते हैं। इस मंत्र से आप समझ सकते हैं जो प्राचीन भारत में हम लोगों का हमारे पूर्वजों का एजुकेशन के प्रति ज्ञान पाने के प्रति कितना ललक था और कितना ऊंचा स्थान था वो आप उपनयन संस्कार के द्वारा समझेंगे। आचार्य उसको आचार्य मतलब टीचर है, आजकल तो आचार्य नहीं रहे, आप तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो गए तो आप टीचर प्रोफेसर जो भी कह सकते हैं, पर सिस्टम भी बदल गया। टीचर प्रोफेसर तो एक थोड़ी टाइम के लिए सिर्फ पढ़ा करके आ जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है वो पढ़ा करके आ जाते हैं। प्राचीन काल में टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो पढ़ाता भी था, ग्रंथों को भी पढ़ाता था, बुक्स भी पढ़ाता था, उसके चरित्र कैरेक्टर भी ठीक करता था, उसके अंदर ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, खाना पीना रहना सोना खेलना कूदना व्यवहार सब कुछ टीचर के द्वारा होता था, क्योंकि रहता था टीचर के पास। इसीलिए प्राचीन काल में गुरुओं का बड़ा महत्व था, माँ बाप से भी ज्यादा। माँ बाप तो 5-6 साल तक पालते थे और टीचर तो जो आचार्य है वो तो मिनिमम 12 साल से लेकर 48 साल तक पालता था, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं कराता था। और जब बच्चा गुरुकुल से निकलता था तो तेजस्वी विद्वान ज्ञानी यूजफुल सोसाइटी के लिए निकलता था। वो हम डिस्कस करेंगे अगले संस्कार में, समावर्तन संस्कार, जब ग्रेजुएशन संस्कार होता था वो कितना एलैबोरेटेड होता था कि बच्चा पढ़ लिख करके आया है कितना उसको रेस्पेक्ट मिलता था। तो ये है बेसिकली उपनयन संस्कार का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है इंडियन सोसाइटी में। मैं हिंदू सोसाइटी नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस उपनयन संस्कार बंद तो हो चुका है, आज काफी ज्यादा लोगों ने उपनयन संस्कार छोड़ दिया है, अभी भी होता है पर बहुत लोगों ने छोड़ दिया। उसके बावजूद भी जब उपनयन संस्कार को गलत तरीके से हथियार के रूप में यूज किया गया उसका इम्पैक्ट आज भी सोसाइटी पर इंडियन सोसाइटी में है। अब हम आते हैं उपनयन संस्कार क्या है, कैसे होता है, उसको समझने के लिए उसकी टाइमिंग क्या है, किस एज में बच्चे का पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जाता था। तो जितने भी हमारे गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं या स्मृति शास्त्र हैं, उनमें ऑलमोस्ट सेम राय है। आपको पहले भी बताया संस्कारों के बारे में, अलग अलग जो राइटर्स हैं ऑथर्स हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। इस मामले में गर्भ से या जन्म से 8वें साल में ब्राह्मण घर के बच्चे का, क्षत्रिय घर के बच्चे का 11 साल में, वैश्य घर के बच्चे का 12 साल में शुरू करना चाहिए। और अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ब्राह्मण घर का बच्चा मैक्सिमम 16 साल तक उपनयन कर ले, क्षत्रिय का बच्चा मैक्सिमम 22 साल तक अपना उपनयन संस्कार कर दे, वैश्य घर को मैक्सिमम टाइम 24 साल तक उपनयन संस्कार करने का व्यवस्था की गई। 8, 11, 12 क्यों? मतलब ब्राह्मण घर के बच्चे को जल्दी, क्षत्रियों को थोड़ा और लेट, वैश्य को क्यों लेट? उसके पीछे उस समय का सोशल स्ट्रक्चर काम करता था। गुरुकुल में पढ़ाने वाले ब्राह्मण जो ज्ञानी होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था, तो सारे आचार्य तो ब्राह्मण है, आचार्य होने का मतलब ही ब्राह्मण है। तो आचार्यों के जो पुत्र संतान होते थे उनको तो वैसे ही घर के माहौल होता है, प्रोफेसर के बच्चे को या डॉक्टर के घर में बच्चे होते हैं या एक्टर के घर में जो बच्चे होते हैं उनको तो पैदाइशी उन सब चीज का माहौल मिला हुआ होता है। तो बच्चा ऑलरेडी मेंटली फिजिकली हर मामले में जो ब्राह्मण घर का बच्चा प्रिपेयर रहता है, क्योंकि उसके घर में माहौल पढ़ना पढ़ाने का रहता है और गुरुकुल में खुद रहता है क्योंकि उसके माँ बाप गुरुकुल में रहते हैं, वो गुरुकुल के पढ़ाने लिखाने वाले होते हैं, तो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है, तो इसीलिए उसको जल्दी शुरू करने में कोई प्रॉब्लम है। बाकी क्षत्रिय और वैश्य उनके कर्मों के हिसाब से, काम के हिसाब से प्रोफेशन के हिसाब से उनको चूज किया जाता था। इसमें और एक चीज ध्यान रखिए, प्राचीन काल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो दो तरह से होते थे। हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। जन्म से मतलब जब बच्चा मां के पेट से पैदा होता है वो जो टाइमिंग है उससे ईयर काउंट होता था एज, या गर्भ से मतलब बच्चा जब पहली बार गर्भ में आया उससे भी आप काउंट कर सकते हैं उसको कितने साल का हुआ। क्योंकि फिलोसॉफिकली और प्रैक्टिकली हमारा एग्जिस्टेंस गर्भ के पहले दिन से, कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि एक इंडिविजुअल का, व्यक्ति का जो उम्र है, एज है, आयु है, वो कब से काउंट किया जाए, या तो जब वो धरती पर आया, मां के पेट से बाहर आया, या जब पहली बार मां के गर्भ में आया, इट्स अप टू अस, दोनों तरह से काउंट कर सकते हैं। अगर किसी के घर में लगे कि बच्चे को ज्यादा ज्ञानी बनाना है, जैसे आजकल होता है ना, बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना है, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तो शास्त्र, धर्मशास्त्र रेकमेंड करते थे ब्रह्म वर्चस के लिए ब्राह्मण के बच्चा 5 साल में, क्षत्रिय का बच्चा 6 साल में, या वैश्य का बच्चा 8 साल में उपनयन संस्कार करा सकता है अगर उसको लगता है कि बच्चा बहुत उसके अंदर टैलेंट है या सीखने का वो एटीट्यूड है, तो आप जल्दी शुरू कर सकते हैं, जल्दी ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्यादा अधिक जानने के लिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अलग अलग धर्मशास्त्रों में थोड़ा बहुत टाइमिंग में फर्क है, तो वो मैं एक ओवरऑल जो कॉन्सेंसस है उसी के बात करना। अगला पॉइंट है, ये जो उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार में जो रिचुअल्स होते थे उसमें एक जनेऊ दी जाती थी, उपवीत उसको कहते हैं, उपवीत, ये जो आप देखते हैं बच्चे के हाथ में ये धागा। आजकल हम धागा पहनते हैं, इसी को यज्ञोपवीत या उपवीत या जनेऊ कहते हैं, पर इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। शुरुआती समय में ये धागे का कंसेप्ट नहीं था, थ्रेड का कंसेप्ट नहीं था। उपवीत का लिटररी मीनिंग होता है ढकना, शरीर को ढकने के लिए जो यूज किया जाए, ये जो अपर गारमेंट है, जो बॉडी के ऊपर जो ढका जाता था। आजकल तो क्योंकि सिला सिलाया कपड़े आ गया, तो आप वो शर्ट है या कुर्ता है या जो भी पहनते हैं, पहले जमाने में सिला सिलाया का सिस्टम इतना नहीं था, तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एक लुंगी जैसा, आजकल पहनते हैं लुंगी जैसा, तो पहनते थे और ऊपर एक डालते थे ऊपर की बॉडी को, अपर बॉडी को ढकने के लिए। ये जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी को ढकने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता था उसको उपवीत कहते थे। प्राचीन काल में इसी उपवीत को ही, इस जो अपर गारमेंट को ही उपवीत के रूप में संस्कार में डाला जाता था, या चर्म यूज होता था। चर्म समझते हैं, ये जो एनिमल्स की स्किन होता है, खास करके डियर स्किन होता है। पहले जमाने में तो वो जो एनिमल्स की स्किन है, चर्म है, पशु चर्म, खास करके मृग चर्म, अलग अलग दूसरे जानवरों का भी चर्म पहनने का और यूज करने का रेफरेंसेस मिलता है शास्त्रों में, होता था। हो सकता है आजकल आप पूछेंगे कि आजकल के जमाने में कि भाई ये चर्म पहनने का क्या मतलब है, आजकल तो मंदिर में कोई ऐसा लेदर का चीज अलाउ ही नहीं करते। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म में जनेऊ चर्म का होता था, और कपड़े भी जो पहनना जाता था वो भी चर्म का। उसका कारण, तब कपास का इतना ज्यादा यूज पैदा नहीं था और चर्म बहुत इजीली अवेलेबल होता था। चर्म समझते हैं, स्किन, इतने सारे पॉपुलेशन तो ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं था, एनिमल पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा था, और गांव और जंगल सब आसपास थे, तो जानवर जब मरते थे उनके स्किन्स इजीली अवेलेबल होता था, तो स्किन्स को पहना भी जाता था, जनेऊ के रूप में भी, अंडरगार्मेंट के रूप में भी, अपर गार्मेंट के रूप में भी, और भी बहुत सारे चीजों के रूप में, आसन के रूप में भी। आपको पता होगा प्राचीन काल में जो ऋषि मुनियों का जो बैठने का जो आसन है वो भी मृग चर्म से होता था, हिरण के चर्म से, और भी बहुत सारे जानवरों का है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में इतना ध्यान रखना है, पहले कपड़ों को ही उपवीत कहा जाता था, या हिरण के चर्म मृग चर्म को ही उपवीत कहा जाता था। बाद में जब हमारे यहाँ कपास की धागे के कपड़े बनने लगे, या दूसरी चीजों का अवेलेबिलिटी कम होने लगी, या जो भी कारण हो, तो उपवीत सूत्र सूत्र मतलब ये थ्रेड के उपवीत के लिए थ्रेड यूज होने लगा। पुराने गृह सूत्र में कहीं भी ये थ्रेड का, ये जो धागे का फॉर्मूला नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है रेफरेंसेस, उपवीत के लिए कपड़ों का रेफरेंसेस मिलता है। इस यज्ञोपवीत जिसका चर्चा हम करेंगे, या उपवीत जनेऊ, ये शब्द ध्यान रखिए, इसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, और साउथ में हिंदी में जनेऊ कहा जाता है, कहीं यज्ञोपवीत कहा जाता है, यज्ञोपवीत उपवीत कहा जाता है, तेलुगु में उसको जंड्यम कहा जाता है, तमिल में पूनल कहा जाता है, कन्नड़ में जनिवर कहा जाता है, बहुत सारे भाषाओं का मुझे पता नहीं है, तो अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग रूप से जानने की व्यवस्था है। ये जो धागा, या आजकल जो हम धागा यूज करते हैं, जिसको उपवीत जनेऊ जो भी शब्द मैंने किया, इसको भी ध्यान रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जानने लायक चीजें हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे चलने से पहले जब जनेऊ संस्कार होता है उसमें बेसिकली चार चीजें बच्चा धारण करता है। एक तो जनेऊ जो उपवीत है जिसकी चर्चा अभी हमने की, दूसरा है मेखला गर्डल जो कमर पर जो बांधा जाता है, पहले चमड़े का भी होता था, कपड़े का होता था, बाद में शण के और धागों का भी यूज होने लगा। तीसरा है आजीन, आजीन मतलब मृग चर्म, उसको भी अंडरगार्मेंट के रूप में यूज किया जाता था जनेऊ संस्कार में। और दंड, दंड समझते हैं, डंडा, स्टाफ। ये चार चीजों का बहुत महत्व होता था उपनयन संस्कार में पहनने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, उपवित शब्द को याद रखिए, जनेऊ शब्द को, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्यों जनेऊ पहना जाता था उपनयन संस्कार में। उपनयन संस्कार में जो जनेऊ पहना जाता था थ्रेड के रूप में, धागा के रूप में, वो तीन धागे के होते हैं, तीन धागे, और तीन धागों का जो एक नॉट होता है, जो गांठ होता है, उसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। ये तीन धागे क्यों, अब ब्रह्म ग्रंथि क्यों, ये हर हिंदू को जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हिंदू धर्म का जो भी कंसेप्ट है, फिलोसफिकल हो, रिचुअल हो, सोशियल हो, सब इस तीन धागे और इस ब्रह्म ग्रंथि के द्वारा रेफर्ड होते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले दो तीन चीजें ध्यान रखिए, जो तीन धागा है ये हर धागे में, और ये हर धागे में थ्री फाइबर्स होते हैं, मतलब हर धागा और छोटे छोटे पतले तीन धागों से बनके बनता है। तो टोटल कितने हुए, मतलब तीन मेन धागे और हर धागे में तीन फाइबर हैं, नौ हैं। और ये तो धागा हम डालते हैं, उसकी एक मेजर है, लंबाई है, इतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बाएं कंधे से लेकर कमर तक, जो बेली बटन नाभि तक होना चाहिए, उससे ऊपर उससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो तीन धागे हम डालते हैं, ये तीन धागा पहला इसकी रेफरेंस है, ये तीन धागा रिमाइंडर के रूप में यूज होता है कि तुम्हारे जीवन में तीन तरह के ऋण हैं। ऋण समझते हैं, कर्जा डेब्ट्स हैं। तुम जब से पैदा हो तुम्हारे लाइफ में तीन तरह के डेब्ट्स हैं, उन तीनों को कहते हैं ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, जब तुम पढ़ने लिखने जाओगे पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम यू आर ओबेइंग समथिंग टू सेजेस, जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने ज्ञान को आप तक पहुंचाया, वो जो पूरा का पूरा ज्ञान का जो फ्लो है वेद से लेकर ऋषि मुनियों से लेकर के तुम्हारे टीचर जो डायरेक्टली तुम्हें पढ़ा रहा है वहां तक, उन सबके प्रति तुम्हारी कृतज्ञता है, थैंक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, इसको कहते हैं ऋषि ऋण। दूसरा पितृ ऋण, माँ बाप के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, माँ बाप का जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है वो है पितृ ऋण। और देव ऋण, ये सारे संसार में परमात्मा से लेकर के नेचर का हर वो एलिमेंट जिसका तुम्हारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है वो देवता है, उन देवताओं के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है या देवताओं ने जो तुम्हारे लिए किया वो देव ऋण है, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तो तीन धागा, जैसे ही तुम जनेऊ संस्कार में जाओगे पढ़ने लिखने जाओगे तो पढ़ाई लिखाई करते हुए ये तीन चीज, अब तुम एजुकेटेड बनोगे, एज एन एजुकेटेड पर्सन यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स एवरी मोमेंट एवरी टाइम day and night, night, that you have to pay off the three debts that you owe to the seers, parents and divinity. तुम्हें ये तीन ऋण चुकाना है जो तुम्हारे ऊपर है, वो कर्जा वो ऋषियों के प्रति, अपने पिता माता के प्रति और उस दिव ये प्रकृति और प्रकृति से परे परमात्मा के प्रति। ये तीन धागे उन तीन ऋणों को चुकाने के लिए आपको याद दिलाते रहते हैं। तैतरीय संहिता का बड़ा सुंदर मंत्र कहता है, जायमान जायमानो हि वै ब्राह्मण स्त्री भिर्ऋणम वा ब्राह्मण स्त्री भिर्ऋणवाम जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एषव अनृणो यः पुत्री यज्ज्वा ब्रह्मचारी वासी। तैतरीय संहिता कहता है, पैदा होते ही जैसे ही व्यक्ति द्विज होता है उसको ये पता होना चाहिए तीन ऋणों से वो ऋणवान है। तीन ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण चुकाएंगे कैसे? ब्रह्मचर्य का पालन कर द्वारा, पढ़ने लिखने आदि के द्वारा ऋषि ऋण चुकाओगे, यज्ञ के द्वारा देव ऋण चुकाओगे और गृहस्थ आश्रम में जाकर के शादी करके विवाह करके बच्चा पैदा करके पितृ ऋण चुकाओगे। ये तीन ऋण चुकाने का काम है, इसके लिए तीन आश्रम है, ये तीन धागे आपको रिमाइंड करते हैं, ये तीन ऋण चुकाना है तो तुम्हें तीनों आश्रमों से जाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओगे तो ऋषि ऋण चुकाने का रास्ता मिलेगा, गृहस्थ आश्रम में जाओगे शादी करके बच्चे पैदा करोगे तो तुम पितृ ऋण चुकाने का रास्ता खुलेगा, वानप्रस्थ में जाओगे देवता ऋण देव ऋण चुकाओगे, दूसरों की सेवा करके परमात्मा की नेचर की प्रकृति की सेवा करके चुकाओगे। और जब तीनों ऋण तुम्हारा चुक जाए, मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा तुम आगे बढ़े, तो फिर जनेऊ को निकाल करके उसको विसर्जित कर देना, अब पहनना नहीं। जब जनेऊ निकालोगे अब तुम सन्यासी बन जाओगे, संन्यास आश्रम में किसी चीज के प्रति ना कोई अटैचमेंट है, ना किसी चीज के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नहीं, आप सबसे ऊपर हो। अपने आप को परमात्मा में सरेंडर कर देना, रिनाउंस कर देना एवरीथिंग, फिजिकली मेंटली सबसे अपने आप को अलग कर देना। तो जनेऊ एक ही शर्त पे तुम्हारे गले में नहीं होगा जब तुम संन्यास ले लेते हो, पर तीनों आश्रमों के द्वारा वो कोई लाखों करोड़ों में एक आधा ऐसा होता है जो जन्म से ही वैरागी हो, वो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यासी को जा सकता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये तीन धागे आपको याद दिलाते हैं तीन ऋणों के। जब तीन ऋण चुक जाएगा तुम अनऋण बन जाओगे, ऋण रहित, अब तुम्हारे पास कोई कर्जा नहीं। तो तीनों आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं तीन धागे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। जब इन तीनों आश्रमों से पार जाओगे तो सन्यास को चले जाओगे। सन्यास में क्या होता है, मुक्ति की रास्ता होती है। मुक्ति पाने के भी तीन तरीके हैं। क्या तरीके हैं, मैंने एक चार्ट बनाया, आई थिंक इट विल हेल्प यू। तो उस मुक्ति पाने के लिए तीन रास्ता है, ज्ञान, कर्म, उपासना। पढ़ो, लिखो, समझो, प्रैक्टिस में लाओ और भक्ति करो। ये ज्ञान, कर्म, उपासना इन तीन धागों के द्वारा बताए जाते हैं। और उन ज्ञान, कर्म, उपासना को बताने वाले तीन शास्त्र हैं, ऋग्वेद ज्ञान का वेद, यजुर्वेद कर्म का वेद, उपासना सामवेद का विषय है। जब तुम ज्ञान, कर्म, उपासना से अपने जीवन को शुद्ध कर दोगे तो तुम क्या बनोगे, तुम अथर्व बनोगे। ये अथर्व वेद क्या होता है, विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जब तुम अपने आप को रियलाइज कर लोगे मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, तो तुम सारे सांसारिक चीजों से ऊपर उठ जाओगे, अथर्व बन जाओगे। अथर्व का अर्थ होता है स्थित प्रज्ञ, थर्वति गतिहिंस नयो। थर्व धातु का अर्थ होता है गति, मूवमेंट, या हिंसा, वायलेंस, इनका निगेशन हो, जहां ये ना हो वो अथर्व है। गीता में आप पढ़ते हैं ना स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ क्या होता है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, जिसके अंदर किसी चीज के प्रति ना अटैचमेंट है, ना अवर्सन है, ना लाइक है, ना डिसलाइक है, सुख में दुख में एक जैसा रहता है। मतलब हर परिस्थिति में मेंटल स्टेट जो है वो सेम रहता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, इसी को अथर्व कहते हैं। विज्ञान का वेद, स्पिरिचुअल नॉलेज का, आत्मज्ञान का वेद है। और तुम्हें अपने जीवन में तीन तरह के कर्मों की साधना है, तुम्हारे जीवन का तीन तरह का गोल है, लक्ष्य है, उसको पाने के लिए तुम्हें कोशिश करना है। धर्म, अर्थ और काम। धर्म जो मेरिट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो वर्च्यूज हैं, जो हमारे धर्म जीवन के जो नैतिक का आचरण है, उसी को धर्म कहते हैं। अर्थ धन संपत्ति आदियों को कमाना, उसको खर्च करना सही रास्ते पर। काम अपनी शारीरिक और इंद्रियों की इच्छाओं को एक रेगुलेटेड वे में संयमित ढंग से उसको पूरा करने की कोशिश करना। जब इनको आप ठीक ठीक पालन करोगे, ये तीन सूत्र तुम्हें याद दिलाते हैं, धर्म अर्थ काम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनसे तुम ऊपर उठ जाओगे तो उसको मोक्ष कहते हैं, वो चौथा अवस्था है जो ब्रह्म ग्रंथि के द्वारा बताया जाता है। उसके लिए करने की क्या जरूरत है, सबसे पहली चीज है कि शुद्धि करो, अपने आप को प्यूरिफाई करो। ये प्यूरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्धि। और वो प्यूरिटी किसकी, काय शुद्धि, वाक शुद्धि, मन शुद्धि। अपने शरीर की शुद्धि करो, वाणी की शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो। कोई काय शुद्धि तो समझ में आया, नहाएंगे, धोएंगे, साबुन लगाएंगे, शैंपू लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, तो काय शुद्धि हुई। ये वाक शुद्धि क्या, ठीक बोलो, जितना जानते हो उतना बोलो, गंदे शब्द मत बोलो, मेजर डुए में बोलो, किसी को कष्ट ना हो ऐसा बोलो। मन शुद्धि क्या है, मन को साफ रखना, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, हिंसा, जेलेसी, इन सब चीजों से ऊपर उठो। मन को जितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से दूर रखोगे उतना मन शुद्ध होगा। ये बेसिक चीजें हैं। मुख्य पाने का कारण क्या है, क्योंकि तीन तरह के दुख जीवन में हैं, इन तीन दुखों से छुटकारा पाने से ही मोक्ष मिलेगा। परमानंद की प्राप्ति, आधि भौतिक दुख जो सांसारिक चीजों के कारण से दुख होता है, आधि दैविक दुख जो नेचर का नेचर के कारण होता है, जिसको आप कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, आध्यात्मिक जो हमारा खुद शरीर और मन बुद्धि के कारण जो हमें दुख होता है, हमारा अपना मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल डिजीजेस हैं, शारीरिक बीमारियां, मन की बीमारियों के कारण जो दुख होता है, आध्यात्मिक दुख, इन तीन दुखों से ऊपर उठोगे तो परमानंद को पाओगे, ब्रह्म ग्रंथि। तो इन तीन दुखों को भी बताने वाला ये तीन सूत्र होते हैं। तो इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा तुम्हारी क्या एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तुम्हारे एग्जिस्टेंस में तीन तरह के स्टेजेस होते हैं, या तो तुम जगे हुए होते हो, या तुम सपनावस्था में होते हो, या सुषुप्ति गाढ़ नींद में होते हो। ये तीन धागे तुम्हारे तीन अवस्थाओं को बताते हैं। अगर तुम इससे ऊपर उड़ जाओ, ब्रह्म ग्रंथि को पहुंच जाओ, ब्रह्म ग्रंथि को खोल देना, वो है तुरीय अवस्था, मोक्षावस्था, चतुर्थावस्था। खुद को जानने के साथ साथ संसार को भी जानोगे तो संसार के भी तीन ही अवस्थाएं हैं। सृष्टि, या तो वो सृष्टि अवस्था में होता है, संसार की जागृत अवस्था, या एग्जिस्टेंस में होता है, या प्रलय अवस्था में होता है। परमात्मा के बेसिकली तीन संसार से रिलेटेड काम है, या तो वो क्रिएट क्रिएशन कर रहा होता है, या इनको प्रिजर्व कर रहा होता है, या इनको डिसॉल्व कर रहा होता है। ये तीनों से ऊपर उठ जाओगे तो संसार की तुरीय अवस्था, जहां ये तीनों का कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। ये तीन धागे ये भी याद दिलाते हैं तुम्हारे जीवन में जानने के लिए कि तीन चीजें जानना जरूरी है, तीन तत्व। ये तीन तत्व है प्रकृति, आत्मा, परमात्मा। ये तीनों नित्य है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टेंस है। प्रकृति ये मैटेरियल वर्ल्ड है, इसको भी ठीक ठीक समझना जरूरी है। आत्मा तुम कौन हो, तुम्हें भी खुद को समझना जरूरी है। और परमात्मा इस संसार का रचयिता, ऑथर है, उसको भी समझना। जब तुम प्रकृति को समझोगे, मैटेरियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा ये सारा संसार, इंक्लूडिंग तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, तीन चीजों से बना है, सत्व, रज, तम गुणों से। तो इन चीजों को जब आप समझोगे, पता चलेगा ये संसार सब कुछ है, उसमें एक काल है, वो काल तीन तरह से, जो टाइम है उसके तीन तरह के यूनिट है। या तो कोई चीज पास्ट हो चुका है, या कोई चीज इन प्रेजेंट है, वर्तमान में हो रहा होता है, या कुछ होने वाला है। ये सारा संसार 3+1 में चलता है। तुम्हारा जनेऊ तीन धागे, उन तीनों को और ब्रह्म ग्रंथि, उस एक अदृश्य, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, जो मांडुक्य उपनिषद में आप पढ़ते हैं तुरीयावस्था, उसी को बताने के लिए। और इन सब चीजों का ज्ञान कैसे मिलेगा, जिनके प्रति तुम्हारा ऋण है? माता, वो कितने तीन तुम्हारे गुरु हैं। माता पहली गुरु, मातृदेवो भव, दूसरी गुरु, दूसरा गुरु तुम्हारे पिता, पितृदेवो भव, तीसरा है आचार्य, आचार्य देवो भव। जब इन तीनों को गुरु मान करके आगे बढ़ोगे, तो सारा संसार में फिर हर कोई तुम्हारे लिए देवता बन जाएगा, अतिथि देवो भव। जब तुम ब्रह्मचारी बनोगे, स्टूडेंट लाइफ में जाओगे, तो तुम्हें तीन तरह से अग्नि, तीन तरह के अग्नि यूज करना है, तीन तरह के फायर। ये थोड़े शास्त्रीय विषय है, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। गृहस्थ आश्रम को में रहने के लिए गार्हपत्य अग्नि, जिन गृहस्थलों को जिन अग्नियों से अपने घर में यज्ञ करते हैं, याज्ञिक कर्म करते हैं, गार्हपत्य अग्नि। उस अग्नि से जब संस्कार आदि जो बाह्य कर्म करते हैं, उसको आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। इस तरह के तीन तरह के अग्नि रिकमेंड है। तो कहने का भाव है, ये तीन धागे और ये ब्रह्म ग्रंथि, ये न केवल पहनने के लिए होते हैं, वो इन सब चीजों को आपको एवरी मोमेंट, हर क्षण रिमाइंड कराते रहते हैं, ये आपके स्मारक बनते रहते हैं। आपको क्या करना है, क्या जानना है, कैसे जानना है, फिर याद करिए। शुरू में मैंने कहा ये जो तीन धागे हैं, इन तीन धागे में से हर धागा में तीन तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो टोटल उसमें 9 धागे होते हैं। तो उसमें टोटल मिलाकर के 9 टाइनी थ्रेड्स या फाइबर्स उसमें होते हैं। ये 9 धागे जो हर धागे में 3-3 होने का, ये हमारे शरीर की बनावट को एक्सप्लेन करते हैं। तुम्हारा शरीर जो नवद्वार वाला शरीर है, 9 दरवाजे वाला जो तुम्हारा शरीर है, 9 गेट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तुम्हारे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, तुम्हारा मुंह और 2 जेनिटल्स, तुम्हारे मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय जेनिटल्स। ये जो 9 दरवाजे हैं तुम्हारे शरीर रूपक घर में, इन 9 दरवाजे के प्रति वॉचमैन बनना ब्रह्मचारी। अभी तक तो तुम इनडिसिप्लिन थे, जो मर्जी करते थे, जिसको भी छूते थे, जिसको भी जैसा यूज करते थे। अब केयरफुल होना है, इन 9 दरवाजों को इतना ध्यान रखो, कोई इनमें कोई इनके द्वारा कोई ना गलत काम हो तुम्हारे द्वारा, ना कोई गलत चीजें अंदर जाए, ना कोई गलत चीजें तुम्हारे से बाहर जाए। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? आप दूसरों से अपने अंदर कुछ लेते हैं और अपने से कुछ बाहर निकालते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये इंटरैक्शन को ही कहा गया कि मानो तुम्हारे अंदर कुछ जाने और आने के 9 रास्ते हैं, इनको केयरफुली संभालना है। अब ब्रह्मचारी हो, अनुशासन डिसिप्लिन मैटर करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो 9 धागे, मतलब जो 3 धागे और 9 फाइबर से बने हुए हैं, इसकी एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। ये टोटल 96 अंगुली बोलते हैं, अंगुली समझते हैं। यह है एक अंगुली, यह है एक अंगुली, यह है 4 अंगुली। तो 4 अंगुलियों में ऐसे लपेटोगे इस धागे को तो 32 बार लपेट, 32 बार तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अब काउंट कर लीजिए। तो 4 जब लपटोगे तो वो 24 बार होगा। अच्छा, तो जब आप इसको लपेटोगे तो वो 96 अंगुली होनी चाहिए। मतलब उसकी जो लंबाई है वो आजकल की तरह स्केल की लंबाई नहीं थी, अंगुलियों की लंबाई, तो 96 फिंगर के बराबर उसकी लंबाई होने की जरूरत है। तो इसका क्या भाव था कि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो जनेऊ का धागा है 96 अंगुली के बराबर लंबाई, तुम्हें उतने ही विद्या पढ़नी है। प्राचीन काल में 96 तरह के 96 टाइप्स ऑफ फील्ड्स ऑफ नॉलेजेस थे। उनमें से उसको हम कहते हैं 64 कलाएं, चतुष्षष्ठी कलाहा, मतलब 64 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। उसमें आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, साइंस, इंजीनियरिंग के जो अलग अलग टेक्निक है वो 64 टाइप्स हैं, और 32 टाइप्स ऑफ विद्याएं, 32 तरह के विद्याएं, मतलब 32 टाइप्स ऑफ फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं, टोटल 96। तो ये 96 या 96 प्रकार की विद्या और कलाएं हैं, ये याद रखना। तुम कितना सीख पाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर जितना भी सीखो मत सोचना कि तुम सब जानते हो, क्योंकि इतनी विद्या और कलाओं की जानने की जरूरत है। आजकल जरूरी, आजकल 96 फील्ड ऑफ नॉलेज नहीं है, आजकल तो 9000 तरह के भी आर्ट और नॉलेज के अलग अलग फील्ड बन चुके हैं, 9000, अब हजारों बन चुके हैं, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान का विकास होता जाता है। टेक्निकली भी हम एडवांस्ड होते जाते हैं, आर्ट्स भी अलग अलग फील्ड्स बनते जाते हैं, पर आप उनको भी ध्यान रखिए। 5000, 10000, 15000 साल पहले भी हम 96 टाइप्स ऑफ नॉलेज को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता था। उसमें केवल ज्ञान नहीं था, 62 64 तरह की तो कलाएं थी, 64 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर्ट्स थे, वो भी सीखने की जरूरत होती थी। और एक चीज इसका जो इंपोर्टेंस है जनेऊ संस्कार का, पहनने की तरीका, वो मैं आपको स्लाइड दिखा करके बताना चाहता हूं। ये जो जनेऊ पहना जाता है, ये बाएं कंधे से लेकर के लेफ्ट शोल्जर से लेकर के, ये देखिए लेफ्ट शोल्जर से लेकर के चेस्ट से होकर के राइट साइड के वेस्ट तक आना चाहिए, नाभि के बेली बटन तक आसपास आना चाहिए। मतलब बाएं कंधे से शुरू करके हार्ट को टच करता हुआ कंधे तक होना चाहिए, और नियम है कि वो वेस्ट तक, कमर तक हो, उसे नीचे ना हो या उससे ऊपर ना हो, मतलब नाभि के आसपास वो रहे। इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ये भी उस ब्रह्मचारी को जानने की जरूरत है, ये जो तुम जनेऊ तुम्हें दिया गया इस प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कंधे से लेकर कमर तक, इसका क्या भाव है। एक मिनट, ये लेफ्ट शोल्जर जो है, बायां कंधा, हमारे यहां बोझ उठाने का प्रतीक है। बोझ उठाना समझते हैं, बियरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप भार उठाते हैं ना, कोई हेवी चीज उठाते हैं, मैन्युअली उठाते हैं, तो आप कंधे पर रखते हैं। ये जनेऊ कंधे पर डालने का मतलब, उस बच्चा, तुम अब 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का तो हो, तुम ये जो पढ़ने जा रहे हो, वो जब तुम एजुकेटेड बनोगे तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स व्हाट? तुम अब एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे सोसाइटी के लिए, तुम्हारे देश के लिए, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए और इस कॉस्मस के लिए। तुम जो कुछ भी पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, जानोगे, इन सबके काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एटम बनाते बनाते एटम बम भी बना देना बर्बाद करने के लिए। एटम तो समझना, एटॉमिक एनर्जी को भी समझना, पर एटॉमिक बम नहीं बनाना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट मिस यूज योर इंटेलेक्ट एंड नॉलेज टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ऑलवेज डू समथिंग टू क्रिएट समथिंग, नॉट टू डिस्ट्रॉय समथिंग। जो आजकल हम देखते हैं, अपने ज्ञान का, अपने इंटेलेक्ट का ऐसा यूज करते हैं कि दुनिया की बर्बादी करने के लिए भी हम कितने सारे ज्ञान को यूज करते हैं। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार, समाज, देश, सबके प्रति तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसको फील करना। और जनेऊ जब तुम्हारे बाएं कंधे से लेकर के सीने तक आता है, सीने में एक दिल भी है, उसको भी समझना। ये दिल प्यार का, हृदय का, वहां हृदय है, हार्ट है, उस दिल को भी समझना जहां इमोशंस हैं, और इमोशन के साथ ज्ञान को यूज करना। इस इमोशन में थोड़ा प्रेम और श्रद्धा को रखना। ज्ञान को पाते हुए यूज करते समय इमोशनलेस मत बनना। आजकल हम देखते हैं इमोशनलेस साइंटिस्ट, इमोशनलेस इंजीनियर्स, होता क्या है, हम रोबोट बन जाते हैं, हम खूंखार जानवरों से बदतर बन जाते हैं, क्योंकि हम प्राणियों के, वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उनकी दिल को नहीं समझ पाते हैं। तो अपने हार्ट को भी उस नॉलेज के साथ जोड़ना, श्रद्धा को, भक्ति को, दूसरों के प्रेम को, दूसरों के दुख को, दर्द को, खुशी को, इसको भी फील करते हुए अपने ज्ञान का यूज करना। और ये तुम्हारा धागा बाएं कंधे से लेकर दिल को छूता हुआ जब दाहिने कमर तक आए, ये दाहिना कमर कहते हैं संकल्प का प्रतीक है, डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। कहते हैं ना हिंदी में, कमर बांध लो, कमर कस लो। कमर कसने का मतलब बी डिटरमाइंड, तैयार हो जाओ। ये कमर कसना एक प्राचीन काल की एक एक प्रोवर्ब है, एक फ्रेज है, बोलने की तरीका है, मतलब संकल्पित हो जाना, डिटरमिनेशन के साथ करना। जो ज्ञान लेना चाहते हो उस ज्ञान में भी डिटरमिनेशन की जरूरत है, व्रत की, संकल्प की, और ज्ञान पाने के बाद जब तुम इसको यूज करोगे तो भी ये डिटर्मिनेशन काम आएगा। आज टाइम हो चुका है और बहुत सुंदर सुंदर चीजें बताने की थी, नेक्स्ट टाइम हम जानने की कोशिश करेंगे। जब उपनयन संस्कार होता है उसमें ऐसी बहुत सारी विधियां होती हैं, वो भी कितना पावरफुल विधियां है। मैं बस और एक मिनट लूंगा। ये जो डिटर्मिनेशन की बात आई व्रत की, तो ब्रह्मचारी जब उपनयन संस्कार हो रहा होता है तो वो यज्ञ के समय पांच मंत्र बोलता है आहुति देते हुए कि मैं, और उसका हर मंत्र के आखिर में आता है इदम अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। ये जो मेरा व्रत है, जो संकल्प है, वो डिटर्मिनेशन है, उपनयन संस्कार में पढ़ते समय वो क्या होना चाहिए? मैं झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा, इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर जाऊंगा। व्हाट इज इग्नोरेंस? दैट इज अनट्रूथ, यही झूठ है। नॉलेज ट्रूथ है। मैं सच्चाई को जानूंगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करूंगा और सच्चाई को बोलूंगा। बाकी हम अगले बार जानेंगे इस उपनयन संस्कार के बाकी जो हिस्से हैं, उसके साथ एजुकेशनल सेरेमनीज के जो बाकी दो संस्कार हैं, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार, वो भी हम अगले बार जानेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।